और इसके बाद फिर दूसरी चीज क्या है, वैया कनस्ताइन, और खास तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। ये है अब दूसरी बात। पहली बात थी नाबुदू, हम इबादत करते हैं। पहले पक्का इरादा किया इबादत का, और अब इबादत की बेहतरीन किस्म है दुआ। अद्दुआ हुवल मुखुल इबादा, रिवायत में आता है कि दुआ तो इबादत का मगज है, ब्रेन है। जैसे मगज के बगैर बाकी चीजें बेकार होती है ना। एक जगह आता है अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वो इबादत है। अब आपने जब या का ना बुदू कहा तो साथ ही कह दिया कि भाई या कनस्ताइन, और खास तुझसे ही मदद तलब करते हैं। नस्ताइन का लफ्ज जो है हम देख चुके, मदद के लफ्जों में आता है, ऑन एयानत, मदद तलब करना। एक बंदा अल्लाह ताला से मदद तलब करता है। अब इस लफ्ज को भी जरा गौर से देखेंगे तो बहुत घबराहट पैदा होती है, और वो क्या कि खास तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। क्या मतलब, फिर इसके अलावा किसी और से नहीं मदद तलब कर सकते? क्या मैं आप में से किसी को नहीं कह सकती कि पानी का ग्लास दीजिएगा? क्या आप अपने हस्बैंड को नहीं कह सकते कि मुझे स्कूल छोड़ आइए? सारा दिन तो हम यही कुछ कर रहे हैं। तो याद रखिए कि मदद दो तरह से तलब की जाती है, एक असबाब को इस्तेमाल करके, मा तहत अल असबाब, जो असबाब के नीचे है, और दूसरी मदद होती है मा फौक अल असबाब, असबाब यानी मींस को यूज किए बगैर। छोटी सी मिसाल दूंगी तो समझ आ जाएगी। मैंने कहा किसी से कि पानी का ग्लास दें, मुझे यकीन है कि वो अपनी जगह से उठेंगी, फ्रिज खोलेंगी, पानी की बोतल निकालेंगी, कैबिनेट से ग्लास निकालेंगी, पानी डालेंगी, फिर चल के मेरे पास आएंगी। कितने मीन्स यूज किए ना उन्होंने। ये है माँ तहत अल असबाब, मीन्स को यूज करते हुए कोई आपकी मदद करे। आपके हस्बैंड ने गाड़ी निकाली, आपको उसमें बिठाया, आपको यहाँ छोड़ गए, ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, मैं खुद ही रोटी पका लूंगा, चलिए आज रोटी तो पकाई, आटा कहाँ से आया, मैं खुद ही ले आऊंगी स्टोर से, ले आइए। ये बताएं कि स्टोर से आटा आप ले के आई तो वो आटा पीसा किसने? जाइए पीछे किसान के पास, उसके हाथ से बीज लें, पहले बीज डालें, फिर उसको काटें, फिर उसको बनाएं, फिर आटा गूंदें। इम्पॉसिबल है, ये तो है अलाउड। हाँ, ये सहाबा कराम का ईमान था। तकवा की हद पे जब इंसान आगे बढ़ता जाता है ना, तो फिर वो भी चीजें छोड़ देता है जिसकी इजाजत होती है। इसीलिए सहाबा कराम में से बास लोगों की आदत आती है कि वो घोड़े पे बैठते, उनके हाथ से चाबुक गिर जाता, पास खड़े शख्स को नहीं कहते थे, ये नहीं कहते थे कि मुझे दो, बल्कि उतर के नीचे से खुद पकड़ते थे। कहते थे हम नमाज में तो या अल्लाह को तो ये कहते हैं कि भाई या का नस्ताइन, तो हम किसी और की मदद क्यों तलब करें? लेकिन ये बात ऐसे नहीं है कि आप मदद तलब नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए पानी का ग्लास मांग लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि मैं कहूँ किसी से, किसी के बारे में, अल्लाह ना करे मेरा ये अकीदा हो, फलां बुजुर्ग हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, मैं उनसे कुछ मांगूंगी ना तो यहाँ बैठे बैठे वो हाजिर कर देंगे। मसलन जैसे लोगों ने बुजुर्गों के नाम पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, फलां बेटे देता है, फलां खजाने देता है, और उनका ख्याल है कि वो अगर फौत भी हो चुके हैं और कब्रों में, इसके बावजूद उनकी इतनी ताकत है कि वो हमें बेटे, औलादें, माल, जॉब्स और सब कुछ दे सकते हैं। ये जायज़ नहीं है, इसी का नाम शिर्क है। और शिर्क के फैलाव में एक बहुत बड़ा शिर्क ये है कि अल्लाह के सिवा दूसरों से इस तरह की मदद तलब कर लेना कि जिसमें मीन्स यूज नहीं होते, ठीक है। तो इस बात से क्या पता चला कि वह या कनस्ताइन, एक बंदा अपने रब के साथ एक गहरा ताल्लुक पैदा करता है। देखिए, आप हर एक से मांग सकते हैं कोई चीज? मांग सकता है हर एक से? नामुमकिन है। आपके शौहर आपकी बात ना माने, लेकिन क्या आप सोच सकती हैं कि घर का खर्चा शौहर की बजाय आप अपने देवर से मांग लें, आप अपने भाई से मांग लें? मांगता है कोई? बंदा शर्मिंदा हो जाए, भूखा रह ले, किसी को नहीं कहेगा कि मेरे पास खर्चा नहीं है। क्यों? शौहर से मांगूंगी, देगा तो उसी से मांगना है, नहीं देगा तो उसी से मांगना है। इसी तरह आप देखिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो माँ से लेते हैं, बाज दफा बाप देना भी चाहे तो बच्चे नहीं लेते, नहीं मम्मी से लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ अल्लाह से मांग के जो अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है ना, वो ही है असल में बंदगी का ताल्लुक। ए अल्लाह बता फिर किससे मांगू, तू नहीं देगा तो मैं किससे मांगू, मेरा तो कोई और दर ही नहीं है। लोगों के बहुत से होंगे, मेरा कोई नहीं है। मिलनी है तो तुझसे मिलनी है, नहीं मिलनी तो तुझसे ही नहीं मिलनी। देता है तो तू दे, नहीं देता तो ना दे, मैंने नहीं लेना किसी और से। ये इंसान के अकीदे का इम्तिहान होता है, और जब बंदा इस अकीदे में सच्चा साबित होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला वहां से देता है जहां से बंदे का गुमान भी नहीं होता, सोच भी नहीं कर सकता कि वाकई अल्लाह ताला ने मुझे यहां से दे दिया। और एक इंसान अल्लाह की रहमत में आ जाता है, ऐसा बंदा फिर अल्लाह ताला से मांगते मांगते आगे पहुंच जाता है, और एक कैफियत ऐसी आ जाती है कि फिर वो बहुत कीमती चीज़ मांग लेता है, और वो क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहां से आखिर तक अब दुआ शुरू हो रही है। सूरत अल फातिहा से हमें दुआ मांगने का सलीका भी मिल गया। पहले अल्लाह ताला की तारीफ की 3 आयात में, फिर इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन में अपनी हैसियत को सामने रखा कि अल्लाह मैं बड़ी कमजोर हूं, और अब मांगने की चीजें तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी मदद और एक ईमान वाले की जिंदगी की सबसे कीमती मता है हिदायत, गाइडेंस। इसीलिए कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह दिखा मुझको सीधा रास्ता, सीधा रास्ता दिखा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, सीधा रास्ता भी है, दिखा भी है। लफ्ज़ इहदिना को अगर हम देखें तो इसमें लफ्ज़ हदिया छुपा हुआ है। उर्दू में बोलते हैं ये चीज़ मैंने आपको हदियातन दी थी, हदिया कहते हैं तोहफे को। तोहफा क्या होता है, जो बंदे को बगैर किसी कीमत के मिल जाता है, कोई दूसरा देने से खुश भी होता है। यानी तोहफा लेकर एक इंसान शर्मिंदा नहीं होता, भीख मांग के शर्मिंदा हो सकता है, किसी से कुछ जबरदस्ती ली तो अफसोस हो सकता है, लेकिन जब कोई चीज तोहफे में मिल जाती है ना, तो फिर इंसान खुशी महसूस करता है। तो अल्लाह ताला ने हिदायत का रूट हदिया तोहफा क्यों रखा, कि पता चल जाए कि हिदायत एक तोहफा है, और ये तोहफा अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता। दुनिया की हर चीज बिन मांगे मिल जाती है, हिदायत बिन मांगे नहीं मिलती। इसके लिए तड़पना पड़ता है, इसके लिए परेशान होना पड़ता है, इसके लिए एक इंसान अल्लाह ताला से भीख मांगता है कि इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। थक गई हूँ भटक भटक के, मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने बड़े लोगों को खुश करना चाहा है, मैंने बड़े लोगों की मर्जी पे चलना चाहा है, लेकिन कोई खुशी नहीं हुआ, कोई मुझसे राजी नहीं होता। अब मैं तेरी रजा के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। यहाँ गौर से देखिएगा, इहदिना से पहले बंदे ने अल्लाह की बड़ाई का यकीन भी कर लिया, अल्लाह पे ईमान ले आया ना, फिर उसके बाद देखिए आखिरत पर भी उसका यकीन आ गया, अल्लाह के रहम का भी मामला आ गया, बंदगी भी सीख ली, इस्तेआनत यानी मदद मांगना भी सीख लिया। अब क्या मांग रहे हैं, छोटा सा बड़ा बारीक नुक्ता है, थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी इस पे। दोहराती हूँ, इहदिना से पहले बंदे को अल्लाह के एक होने का यकीन आ चुका है ना, तारीफें उसकी रब है, आलमीन का रहमान है, रहीम है, मालिक है, और क्यामत के दिन का तसव्वुर करके तो खुद ही पता चल गया कि मरने के बाद जीना है, और अच्छे अमलों की भी सजा जजा है और बुरों की भी है, अच्छे अमलों की जजा है और बुरे की सजा है। अब ये बिल्कुल सही अकीदा है उसका, अब इसके बाद किस हिदायत की जरूरत है। आज मुसलमानों में से अक्सरियत इसी गलत फहमी का शिकार है कि बस दीन क्या है, अल्लाह को जान लो, नमाजें पढ़ लो, आखिरत की बातें कर लो, और बस जब नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ लो। हालांकि इया का नाबुदू जो है ना, और इससे जो पीछे की बातें, असल में इससे तो हिदायत की तरफ जाने की तड़प लगती है। ईमान के अंदर जो चीज़ आ गई, जो अकीदे में आ गई, अब एक इंसान उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहता है। छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, शायद बात वाजे हो जाएगी। कभी आपने सड़क बनती भी देखी हो, उसका नक्शा बनता है, उसको टेस्ट करवाया जाता है, फिर उसका एस्टिमेशन होता है कितनी देर में बनेगी, कितना मटेरियल लगेगा, बीच में रास्ते में अगर कुछ पहाड़ आते हैं तो उनको डायनामाइट से फाड़ तोड़ा जाएगा, किसी का घर आता है तो उसकी कीमत दे के उससे वो घर खरीदा जाएगा, फिर उसको डिमोलिश किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आती है ना। फिर उसके बाद कुछ किसी को बिल्डर को हायर किया जाता है, फिर वो उसका ठेका ले लेता है, फिर उसके साथ मजदूर मिस्त्री लगते हैं, और फिर सड़क बनती है। अब अल्लाह की जात जो है, उसने एक नक्शा बनाया, उसने जिंदगी गुजारने का एक तरीका सिखाना था, गोया कि आप कह लें कि सिराते मुस्तकीम का नक्शा बन गया। अब वो कैसे बननी है, उसकी पूरी डिटेल्स कुरान पाक में आ गई। ये कुरान पाक क्या है, ये वर्क बुक है, हैंड बुक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं जिंदगी गुजारने के। अच्छा, अब कोई आए और नक्शे को देखे और कहे कि नक्शा देख लिया ये काफी है, काफी होगा? उस नक्शे को पढ़ना शुरू कर दे, काफी अच्छी बातें लिखी हुई है, इतने साल में बनेगी, क्या इससे सड़क बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। उसके लिए रास्ते की चट्टानों को हटाना पड़ेगा, उसके लिए वो सारे अमली काम करने पड़ेंगे, रुकावटों को दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए अजम दरकार है, चट्टानों और पहाड़ों से मजबूत किस्म का। अब होता क्या है कि जब एक बंदे को ये फिक्र लग जाती है ना कि सिराते मुस्तकीम पे चलना मेरी अशद जरूरत है, लोग आपको चलने नहीं देंगे, लोग ऐसे हैं जैसे चट्टाने हैं आपके रास्ते में खड़ी हुई, रुकावट, कहीं हकूक के नाम पे, कहीं जिम्मेदारियों के नाम पे, कहीं फराइज के नाम पे, कहीं बड़े छोटे होने के नाम पे, हर बंदा आपसे हिस्सा लेना चाहता है। याद रखिए, अल्लाह से ज्यादा हिस्से हमसे लोग लेना चाहते हैं, और लोग हमसे वो भी लेना चाहते हैं जो उनका हिस्सा भी नहीं बनता। आदत है ना लोगों की हिस्से से ज्यादा मांगने की। और हमारा हाल क्या है कि हम लोगों को अक्सर उनके हिस्से से भी ज्यादा दे देते हैं, और अल्लाह का जो हिस्सा बनता है ना उससे भी कम देते हैं। ये कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए एक बंदा कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सिराते मुस्तकीम मेरी जरूरत है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपनी कब्र याद आती है, मुझे हशर के दिन की जवाबदेही का फिक्र है, तू मेरे रास्ते की रुकावटों को दूर कर। तो इहदीना एक दुआ है अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को दूर करने की, अल्लाह मेरे हालात साजगार बना। और बंदे को यकीन है इस रास्ते में बोला हुआ एक एक जुमला तुलेगा, एक एक आंसू जो आपने सिराते मुस्तकीम पे आने के लिए या रहने के लिए बोला, किसी को मनाया, किसी की मिन्नतें की, किसी को आपने फिसलाया, किसी की एक्स्ट्रा खिदमत की, आप वो भी काम करके आते हैं घर से जो पहले नहीं करते थे कि किसी को कोई मौका ना मिले, आपने मौसमों की शिद्दतें सही, आपने जो सहा, आपके लिए ये सब आसान हो जाएगा जब आपको ये यकीन है कि ये मेरी अशद ज़रूरत है, मैंने कल अपने रब को मुंह दिखाना है, क़यामत के दिन वो मेरे सामने होगा, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगी, ये स्याह चेहरा लेके जाऊंगी, ये ख्वाहिशों में टूटा हुआ दिल लेके जाऊंगी, ये दुनिया की भाग दौड़ वाला दिल लेके जाऊंगी, ये एहसास बंदे को रुलाता है और उसकी जुबान से निकलता है दीना सिरातल मुस्तकीम। फिर याद रखिए कि दुनिया के मजे मजे नहीं लगते, ये खेल खेल नहीं लगता, ये जिंदगी कोई फन प्लेक्स नहीं है, ये दुनिया कोई चकी चीज का खेल नहीं है। आए और आपने चिट चैट की और चले गए, गॉसिप की और चले गए, फन के नाम पे हर वीकेंड पे एक महफिल सजी जहां सारे जमा हुए, खाया पिया आधी रात हुई, जाके बिस्तरों पे सोए, आधे दिन गुजारने के बाद अगले दिन उठे, ये जिंदगी ये नहीं है। मसलन आप देखिए कि आप जहाज़ में जाते हैं, अमूमन जहाज़ की दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एक होती है इकोनॉमी क्लास, उसमें आम लोग बैठते हैं जिनको वक्त गुजार के सिर्फ गुजरना है वहां से। कुछ लोगों के पास सहूलतें भी होती हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लास होती है, उसी को बिजनेस क्लास कह लें और अपर क्लास कह लें, कुछ भी कह लें। चलिए अब आप एक ही जहाज है, उसमें 100 मुसाफिर हैं, 90 मुसाफिर इकोनॉमी में बैठे हुए हैं। तसव्वुर मिलाएं, सीट्स तंग है, कुछ सर्विस अच्छी नहीं है, वाजबी सी है, और बीच में पर्दा भी लगा देते हैं बेचारे कि जो अगलों को सर्व किया जा रहा है पिछलों का दिल ही ना खराब होता रहे। हैं अब अगले 10 सीटों पे खुले खुले बैठे हुए लोग हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको पहले उनके हाथ साफ कराते हैं, फिर उनको जूस पेश करते हैं, फिर उनको फ्रूट्स देते हैं, फिर उनको एपेटाइजर्स देते हैं, फिर कहीं खाना देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके पूछते हैं आपको कुछ चाहिए तो नहीं, वो सो जाए तो उनको उठाते नहीं। मिसाल है, दो मुख्तलिफ मजे हैं, हकीकत है। पिछला बंदा अगर शुक्र की हालत से नहीं गुजर चुका ना, जो हमने पीछे देखा, तो वो तो जलता कुड़ता ही रह जाएगा। क्या मुसीबत, यही शौहर पल्ले पड़ना था जो इकोनॉमी की सीट लेके देता है। होती मेरी भी शादी किसी जरा बड़े शख्स से, आज मैं भी वहां बैठी होती। सोचे, हो सकता है कुड़ने वाले कुड़ेंगे, जलने वाले जलेंगे। इसी तरह कोई आगे बैठा हुआ के देखा है ना, चौड़े होके बैठे हुए, क्या मजे, देखो पीछे, हाँ थर्ड क्लास, हम नहीं बैठते वहां। चले अब दो मुख्तलिफ मजे हैं। इतने में एक अनाउंसमेंट होती है पायलट की तरफ से, माजरत के साथ, कि जहाज के इंजन में खराबी हो चुकी है और चंद मिनट में ये जहाज क्रैश होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों कैटेगरीज का फर्क कायम रहेगा? ये खबर क्या इकोनॉमी में बैठे हुए को तो बुरी लगे और फर्स्ट क्लास में बैठे हुए को मजे की लगेगी? दोनों बराबर है। उस वक्त एक ही फिक्र लग जाएगी कि वे एग्जिट किधर है, इमरजेंसी रेट किधर है। जब आप जहाज पे बैठते हैं तो आप ये नहीं कहते कि फन कितना होगा। कभी आप में से किसी बाशऊर इंसान ने जब जहाज की टिकट लियो तो पहला सवाल कभी काउंटर पे या ऑनलाइन जाके ये पढ़ा कि ये बताएं पहले रास्ते में मूवी कौन सी दिखाएंगे? वो कहेंगे आपने किसी सिनेमा का टिकट खरीदना था, आप इधर क्यों आ गए? कोई आप में से पूछे पहले ये बताएं कि आप बिरयानी खिलाएंगे कि पुलाव खिलाएंगे, इसके लिए आप होटल में जाइए। अल्लाह के बंदो, जहाज में जाने का एक ही मकसद है कि आप यहां से हटके वहां चले जाएं। आपको वो फीका दे दें, मिर्ची दे दें, ना दें, आप सब्र शुक्र करके बैठ जाओ, इसलिए कि आपकी नजर मंजिल पे है। आप तो वहां मुंतजिर हैं कि जहां आपने जाना है वो आपके लिए क्या पका के बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि अच्छा मैं फर्स्ट क्लास में बैठ गई हूँ, तो जरा पायलट साहब आप 4 घंटे वाली फ्लाइट को 8 घंटे में चलाएं, जरा मैं मजा तो ले लूं। मैंने देखा जितने आराम से बैठे होते हैं उतनी ज्यादा परेशानी में होते हैं, क्योंकि साबिर बंदे का तो गुजारा हर जगह हो जाता है, लेकिन जो फैलता ही जाए उसका गुजारा नहीं होता। हम सब इस वक्त दुनिया के एक सफर पे हैं, ये यहां से लेके हमें आखिरत में लेके जाने वाला है। इस शाहराह का नाम है सिराते मुस्तकीम, क्योंकि जब हम कहते हैं ना सिराते मुस्तकीम दिखा, तो कहाँ है वो? दुनिया के किसी मुल्क में आपको दिख रही है? आप कहते हैं शारे फैसल, आप कहते हैं हाईवे 6, आपके इस शहर में भी कुछ रोड्स के नाम होंगे। अब आप देखिए कि दुनिया की ये सारी रोड्स तो दिखती है ना, राइट? तो सिराते मुस्तकीम हमें दिखती है, नहीं दिखती? आइए जरा लफ्ज़ सिरात को थोड़ा सा देखते हैं और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन होगी इंशाल्लाह ताला। सिरात का लफ्ज़ जो है ना, ये स्वाद रौत तोए से है, सौराता। इसका लफ्जी माना होता है निगल जाना, निगलना, टू स्वॉलो। खाना खाते हुए बड़े बड़े लुकमे लेके जो निगलते हैं ना, वही मानी होता है। इसका मानी ये क्यों है? क्योंकि जब आप सड़क पे बैठते हैं ना, तो वो फासले को निगलती है। कभी आप गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठे ना, तेज चलती हुई गाड़ी आप देखें, आपको लगता है जैसे ऐसे फोल्ड हो रही है रोड। ये कैफियत होती है सराता में, सिरात में। क्या मतलब है इसका? कि रास्ते को निगलती है इसके अंदर। अब हम क्या मानी करते हैं, सिरात तो हो गया रास्ता, और मुस्तकीम हम कहते हैं सीधा रास्ता। माशाल्लाह, कारपेटेड रोड, इधर उधर नहीं मोड़ता, और ये बस बड़ा प्यारा फोमी फोमी सा रास्ता है, आपके कदमों को कुछ भी नहीं होगा और आप सीधे पहुंच जाएंगे। हालांकि मुस्तकीम का मानी सीधा नहीं है, ये ट्विस्टेड रास्ता है, ऐसे जिग जैग चलता है। इसके अंदर मोड़ भी आएंगे, इसके अंदर घाटियां भी आएंगी, इसके रास्ते में रुकावटें भी आएंगी। ये टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर कहीं जंप्स भी आएंगे, कहीं राउंड अबाउट आएंगे। चारों तरफ ऑप्शंस दिख रही हैं। कोई आपको बुला रहा है इधर आ जाओ, कोई कहेगा इधर आ जाओ, कोई इधर आ जाओ, और आप कहते नहीं दीना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैंने जो नियत करके इस कुरान का सफर शुरू किया है, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करना, मैं इधर ना उधर देखूं, मुझे बस सीधा जाना है, मुझे नहीं मुड़ना इधर उधर। आगे जाके इंशाल्लाह सूरत आराफ की एक आयत में आपको सिरात मुस्तकीम और सिरातुल गई का तकाबुल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये दो पैरेलल चलने वाले रास्ते हैं, किसी लम्हे आप रास्ते से उतर सकते हैं, आपको पता है ये साथ साथ चलते हैं, आप इधर से उधर क्रिस क्रॉस है ये रास्ता, एक जरा सा गलती लगी आप नीचे जाके गिरेंगे, इसलिए इस पे बहुत समझ बूझ से चलना है। ये कोई मादी रास्ता नहीं है, ये एक नजरिया है, ये एक जिंदगी गुजारने का तरीका है, इसके मुताबिक जिंदगी के बंदा इस दुनिया के वक्त से गुजर जाए और अल्लाह को राजी करे। और जिंदगी कहते ना एक सफर है, कभी सुना आपने, जिंदगी एक सफर है, और हम ये सफर किस रोड पे तय कर रहे हैं, वक्त, वक्त जो है ना टाइम, जिसको आप कहते हैं मेरी लाइफ, मेरा वक्त, मेरी लाइफ, ये वो रोड है जिस पर जिंदगी का सफर तय हो रहा है, और जहां जिंदगी का वक्त खत्म हो जाएगा ना, वहीं ये रास्ता खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी गुजारने का रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐसा शख्स फिर आसान रास्ता नहीं मांगता। देखिए हमने ये नहीं कहा अल्लाह आसान रास्ता दे दे, ये ईज का रास्ता नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह ताला बड़ी लज्जत वाला रास्ता दे, फन वाला रास्ता दे, हम कहते हैं मेहनत वाला रास्ता दे, बस इसकी मंजिल जो है वो बड़ी अच्छी हो, कि वहां हमारा रब हमारे इस्तकबाल में खड़ा हो। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, आओ मेहमानियां तुम्हारी करता हूँ, मौत का सफर जहां शुरू हो वहां से पुकार रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए इत्मीनान वाली रूह चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तू उसके उससे राजी है। ऐसा बंदा कहते हैं दीन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चाहिए, भटक ना जाऊं, अब मुझे जरूरत है तेरी मर्जी को पाने की। अब आप देखिए कि आप सोचें, आप सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं, बस दफा सफर के दौरान आपको ये नहीं पता चलता कि आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता है ना। उसके लिए क्या किया होता है गवर्नमेंट ने, थोड़ी थोड़ी दूर माइलेज स्टोन्स होते हैं, आपका शहर इतने दूर है गया, ओस्लो इतने मील, फिर अगले मील, फिर इतने कम होते हैं ना माइलेज स्टोन्स होते हैं, बाज़ साइंस लिखे होते हैं, बाज़ ग्रीन कलर के बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, बाज़ एरोज होते हैं, कई तरीके होते हैं। अब हम सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, इसके माइलेज स्टोन क्या हैं, सोचिए ज़रा, जिंदगी गुजार रहे हैं, अब डर क्या है कि पता नहीं सीधे रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। तो इसके माइलेज स्टोन जो है ना, ये कुरान पाक की 6666 आयात है, 6666, 4 6 डाल लें, हर आयत जो है ना ये एक माइलेज स्टोन है, उसको चेक करते जाओ, मेरी जिंदगी इसके मुताबिक गुजर रही है कि नहीं, गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द स्ट्रेट पाथ, मैं सीधे रास्ते पे हूँ। और इस तरह जिस बंदे की नजर इतने माइलेज स्टोन्स पे होगी, क्या वो भटक सकता है, नहीं भटकेगा, उसके भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद तो माइलेज जा रहे हैं। हाँ भटकेगा वो जो इन आयतों के माइलेज स्टोन से फायदा नहीं उठाएगा, जो सिर्फ बरकत के लिए पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं से एक आयत ने क्या कहा है, और जिस सूरत की जरूरत जिंदगी में थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसको खोलते हैं मरने वाले की फातिहा खानी पे। अमूमन लोग मरने वाले पे फातिहा पढ़ते हैं, हैरत होती है सोच के भी, क्या कि देखो इस सूरत की जितनी बातें अभी तक मैंने और आपने पढ़ी, बताइए इसकी जरूरत इंसान जिंदा लोगों को है कि फौतशुदा को, सारी जिंदगी ना खुली और आपके बाद लोग खोलते रहे कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, वो तो पहुंच गया जहां पहुंचना था। ये ऐसे ही है जैसे आप घर से निकले और आपको 100 मील दूर जाना है, तो आप ये दुआ तो करें अल्लाह मुझे वहां सीधे रास्ते पे पहुंचाना पहुंचाना, इस मेक सेंस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वहां पहुंच जाए और फिर दुआ करें अल्लाह मुझे यहाँ सही पहुंचाना पहुंचाना। आप तो पहुंच गए, जैसा पहुंचना था पहुंच गए, ऐसे ही हुआ ना। तो ये मजाक है, जिंदगी में अगर कुरान नहीं खुला ना तो बाद में लोग आपके लिए जो मर्जी करते रहे, वो तो बेचारा वहां कहता होगा अल्लाह के बंदो तुम अभी पढ़ लो, तुम भी समझ लो कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है, ये अल्लाह की मर्जी पे जाने का नाम है। और जो सिराते मुस्तकीम पे चलते जाते हैं ना, एक दिन आएगा कि वो पुल सरात पे भी अमन और चैन से खड़े होंगे और वहां कह रहे होंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, रब्बना तमिम लना नूरना, अल्लाह हमारे नूर को पूरा कर दे, हमें ये रोशनी जो कुरान की और इस्लाम की तूने जिंदगी में दी थी इसको हमारी जिंदगी में ला। अब ये रास्ता तो मिल गया, पता भी चल गया कि ये कौन सा रास्ता है जो अल्लाह की मर्जी का रास्ता है। बंदा दिन में बार बार इसकी दुआ करता है, सो के उठता है ना तो सुबह फजर की नमाज में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के अल्लाह जैसे तैसे रात तो गुजर गई, अब तू मुझे दिन का इब्तदाई हिस्सा मैं कैसे गुजारूं, इसकी तौफीक दे, इसकी गाइडेंस कर। खैर अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं, वो दिन का आगाज बड़े अच्छे तरीके से करता है। इतने में जोहर आ जाती है, फिर वो नमाज के लिए खड़ा होकर कहता है दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फजर से जोहर का वक्त तो मैंने बड़े सुकून से गुजार लिया, अब बता आगे जोहर से असर का वक्त कैसे गुजारूं। फिर इस तरह हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक नमाज में वो अपनी इस दुआ को रिकॉल करता है, इस दुआ को दोबारा मांगता है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर रखना, और ईशा की नमाज पढ़ के चुपके से फौरन जाके सो जाता है बिस्तर में, क्योंकि उसको पता है कि अगर ईशा के बाद जागा तो ये दुआ तो मैंने अब मांग ली थी, तो ऐसा ना हो कि रात में कोई खराबी कर दो। धड़का लग रहता है, देखिए आपकी कीमती चीज होती है ना, आपको हर लम्हे धड़का होता है ये चोरी ना हो जाए, आप छुपाते हैं रखते हैं, इधर छोड़ उधर कर, आपकी गाड़ी आपको फिक्र है कहीं खराब ना हो जाए, इसका पुर्जा ना टूट जाए। जिस बंदे के दिल में हिदायत की तड़प लग जाती है ना, फिर वो बंदा इस अंदेशों में जिंदगी गुजारता है, और इसी अंदेशे का नाम तकवा है, जिसका तذکرہ इंशाल्लाह सूरह बकरा के आगाज में होगा। फिर इंसान परेशान होता है कि अल्लाह मुझे इस जिंदगी के सफर से आफियत से गुजार दे, बिस्तरे मर्ग पे लोग परेशान देखे गए कि अल्लाह यहां तक तो पहुंच गए, अभी आगे भी लम्हे मौजूद हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने क्यों कहा करते थे कि मेरा एक कदम जन्नत में हो और दूसरा जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं जब तक मेरा दूसरा कदम भी जन्नत में ना चला जाए। हम क्यों इतने मुतमईन बैठे हैं, हमें तो कोई सर्टिफिकेट नहीं आया आसमानों से कि ऐ साहबे बदर जाओ आज के बाद कुछ भी कर लो तुम जन्नती हो। हम तो नशरे मुबशरा में से भी नहीं कि जिन 10 लोगों को खबर दी गई थी कि तुम जन्नती हो, हम तो उन साहबे कराम में से भी नहीं कि जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देख लिया और उसके बाद उनके ऊपर जहन्नुम हराम हो गई। हम तो किसी 3 न 13 में, हम तो खैरुल कुरून में नहीं, ताबईन में नहीं, तबा ताबईन में नहीं, हम तो मुहद्दिसीन के दौर में नहीं, हम तो फितनों के दौर में बैठे हैं और कितने इत्मीनान से सोए हुए हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं। और जो हमारी नस्लें, ये रास्ता हमारी मौत की सूरत में हमारा तो खत्म हो जाएगा, हमारी नस्लों का तो उसके बाद शुरू हुआ होता है, हमें कैसे नींद आती है रातों को, दिल को गम लगा होता है ना तो ना पहनना अच्छा लगता है, ना ओढ़ना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है। चुपके चुपके कोई आप गम दिल में पाले ना तो लोग आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, आप बताते नहीं है, लेकिन अंदर एक गम लगा होता है, अंदेशा है कि ये ना हो जाए। अब दुनिया के गम और अंदेशे तो दुनिया में लज्जत लेने नहीं देते, इसी तरह जब एक बंदा हिदायत की नेमत को पा लेता है ना तो इस अंदेशे में जीता है। इसीलिए तो उन लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी, इसीलिए तो वो बेचैन रहते थे। एक सहाबी है, एक किसी मौके पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के घर में रात बसर की, उस घर में लोग इस नीयत से देखते थे कि जरा देखें ये कैसे गुजारते हैं रातें, और कहते हैं मैंने रात में गालिबन 40-50 बार कहते हैं कि मैंने बुखला बुखला के इमाम बुखारी को उठते देखा, जरा नींद आने लगती थी तो कांप के उठ जाते थे और फिर अपना कुछ पढ़ने पढ़ाने शुरू होते थे, फिर ऊंग आती थी, फिर उठते थे, फिर सोते थे। एक मौके पे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक सहाबी आ गए और कहने लगे मैं देखूँ तो सही कि अबू हुरैरा में खूबी क्या है, अल्लाह के नबी क्यों हर वक्त अबू हुरैरा का नाम लेते हैं, तालिब इल्म थे ये। और 3 रातें रह के आए। कहते मैंने अबू हुरैरा के घर का जो मंजर देखा कि रात का इब्तदाई हिस्सा जब होता है तो खुद कुरान पाक शुरू कर देते हैं, खुद कुरान पाक पढ़ते हैं, जब सोना चाहते हैं तो बीवी को उठा देते हैं, और दूसरा तिहाई हिस्सा वो कुरान से फायदा उठाती हैं, और जब वो सोना चाहती हैं तो तीसरे हिस्से में घर के गुलाम को उठा दिया जाता है कि उठो तुम कुरान पढ़ो अब। क्यों? कि घर हो अबू हुरैरा का और रात का कोई एक हिस्सा अल्लाह के कलाम के बगैर गुजर जाए। ये वो लोग थे जिनको अंदेशे थे, जिनको गम था, फिक्र लगी हुई थी कि हमारा क्या बनेगा। और आज एक हम जैसे इंसान बेअमल के जो ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि पता नहीं वो नमाज कबूलियत के दर्जे पे पहुंचने के काबिल भी है कि नहीं, और कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, तड़प लगी हो तो आप बताइए मस्जिदों का ये हाल हो आज हमारी, जरा सोचिए। खाना काबा में तो इतने जोश से जाने वाले कि वहां जगह ना मिले तो भी जाना चाहें, और अपने शहर की मस्जिद सुनी हो, फिर इस तरह दीन के लिए लोगों को मेहनतें करनी पड़े, इस तरह लालच दे दे के बुलाना पड़े कि आओ तो सही घर में आओ हम तुम्हें कोई बात सुनाएं, फिर ये बेहिसी तो ना हो। ये सोई हुई उम्मत की अलामत है, जब उम्मतें सोती हैं ना तो उनके मुकद्दर सो जाते हैं। इस वक्त हमें इज्तमाई तौर पे इहदीना, देखिए जमा का सीगा है, ये नहीं कहा इहदी, इहदी होता ना तो इसका होता था मुझे सीधा रास्ता दिखा, इसमें भी एक लफ्ज छुपा हुआ है कि सिराते मुस्तकीम पे बंदा अकेला नहीं चल सकता। आपके ना आप अपना घर साफ कर ले और आपकी गली गंदी, आपके नेबर में गंद, आपके बाहर गंद, पोर्च में गंद, आपका घर कभी साफ नहीं रहेगा, या आप हर वक्त झाड़ू हाथ में रखें। आज यही हो रहा है, हमारी नस्लें गंदगियों में पल रही हैं ना। माँ कोशिश करती है बच्चे को सही रखने की, फायदा क्या? स्कूल से कुछ ले आएगा, कुछ दोस्तों से ले आएगा, कुछ मीडिया से ले आएगा। आप कहते हैं हमारी कोशिशें नहीं काम आ रही, एक रात जाके स्लीप ओवर के लिए किसी रिश्तेदार के घर रहा, पूरे हफ्ते की सारी तरबियत ही खत्म हो गई। इसके लिए जरूरत है इज्तमाई कोशिशों की, तड़प लगे अपने साथ वालों की। कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, फिर माहौल बनेंगे, फिर वो माहौल बनेंगे कि लोग गलियों में फिरेंगे कि कोई अल्लाह का बंदा हमसे अल्लाह के नाम पे सदका कबूल कर ले और कोई लेने वाला नहीं होगा। फिर लोग सोना चांदी बाहर रख के फिर रहे होंगे, किसी को परवाह नहीं होगी उठाने की। इस वक्त इस इज्तमाई तकवे की जरूरत है कि अल्लाह हम सबको दिखा, कौमों के तौर पे, मुल्कों के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। ये कौन सा रास्ता, इसका जिक्र इंशाल्लाह अगली आयत में आएगा। यहाँ तक शऊर के साथ तिलावत सुनते हैं और चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांगें, जहाँ या का नाबुदू आए तो अहद करें, वादा करें, और जहाँ इहदीना की बात आए तो जितना तड़प के अपने आप को इख्बात में करके, इनाबत में करके, तदर्रो में करके, खशियत में करके मांग सके कि अल्लाह अब ना बहकाना, बड़ी जिंदगी भटकी हूँ अब ना मुझे भटकाना। और आप सब एक और रंग में भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पहले तो दुनिया के नाम पे गुमराह थे ना, पता ही नहीं था तेरी मर्जी क्या है, अब कुरान पढ़ने आ गए, अब दीन के नाम पे गुमराह ना करना। कोई बंदा, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप दुआ मांगे अपने रब से कि अल्लाह कोई बंदा, कोई हमारा उस्ताद जो हमें यहाँ पढ़ा रहा है, हमें दीन के नाम पे गुमराह ना करते, क्योंकि दुनिया के नाम पे जो गुमराह होते हैं ना वो पलट आते हैं वापस, उनके अंदर गिल्ट होता है, हमने गलत किया, हम जिंदगी सही नहीं कर रहे, हम जानवर वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब एक दफा दीन के नाम पे बंदा गुमराह हो जाता है, वो नहीं पलटता, वो कहता नहीं बताओ मसलक क्या है, वो कहता है फिक क्या है, वो कहता कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो हम सब, आप सब दुआ मांगे, मैं अपने खिलाफ दुआ मंगवा रही हूँ आपसे कि अल्लाह ताला यहाँ आने के बाद हम कोई ऐसी बात दीन की ना सुने कि जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो, और वही सुने कि जो हकीकत में सिराते मुस्तकीम पे पहुंचाने वाली हो।
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين. آمين.